पाठ 23 अध्याय 19।
पिछले सप्ताह हमने पवित्रता पर चर्चा की थी और मुझे यकीन नहीं है कि पवित्रता पर चर्चा करते समय मेरे पास शब्दों की कमी है या मैं खुद को कमतर महसूस करता हूं। ये जितना सोचा जा सकता है उससे कहीं अधिक व्यापक और विवादास्पद मुद्दा है ना? जो बात इसे विवादास्पद बनाती है वह यह नहीं है कि बाइबल हमें पवित्रता के सार और संचालन को अच्छी तरह से परिभाषित करने वाली पर्याप्त विस्तृत और सुसंगत जानकारी नहीं देती है, बल्कि लोगों ने बाइबल के पूरे खंडों को अनदेखा और अनदेखा करना चुना है और केवल शेष से अधिकांश चीजों के लिए अपनी परिभाषाएं ली हैं। पवित्रता उनमें से एक है, इसलिए पवित्रता की अवधारणा को बहुत कमजोर कर दिया गया है और निष्क्रिय बना दिया गया है। आपको यह जानकर कैसा लगा कि गिनती और निर्गमन और लय व्यवस्था भी बताती है कि पवित्रता और अशुद्धता एक व्यक्ति से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शारीरिक संपर्क के जरिए स्थानांतरित हो सकती है, या कि पवित्रता खतरनाक हो सकती है, या कि सिर्फ कुछ लोगों को ही पवित्रता रखने का अधिकार है और जो लोग पवित्रता नहीं रखते हैं अगर वे आगे बढ़कर पवित्रता प्राप्त करते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये एक कठिन शिक्षा है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, किसी की टिप्पणी नहीं। ये पूरी तरह से जीवंत रंगों में बेबाक और स्पष्ट रूप से मौजूद है। ये वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो कहते हैं उसे स्वीकार करते हैं या नहीं।
लेकिन पहले से सावधान रहें, हमने अभी तक बाइबल में पवित्रता के बारे में जो कुछ भी कहा है वह सब नहीं सीखा है। न ही पवित्रता अकेले ईश्वर की विशेषता है। अन्य कारक जैसे कि उसकी सर्वज्ञता, न्याय, दया, क्षमा, उद्धार और क्रोध बस कुछ नाम लेने के लिए भूमिका निभाते हैं और सभी एक साथ काम करते हैं। ईश्वर कभी भी एक आयामी रूप से कार्य नहीं करता है, यानी केवल न्याय में या केवल दया में या केवल क्रोध में। फिर भी प्रभु के इन पहलुओं को बिना उलझाए और फिर उन्हें अलग करके और यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से जांचे बिना समझने का कोई तरीका नहीं है। और जबकि पवित्रता को नए नियम में तथ्य के रूप में बताया गया है, जहां हम पवित्रता की व्याख्या और परिभाषा पुराने नियम में पाते हैं, मुख्य रूप से तोरह में, चर्च लगभग 2000 वर्षों से जिस युग में डूबा हुआ है उसके कारण एक ऐसा युग जो मेरा मानना है कि समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। चर्च का मिशन आम तौर पर सुसमाचार प्रचार के माध्यम से बढ़ना रहा है और कुल मिलाकर यह काम काफी अच्छी तरह से किया गया है। दुर्भाग्य से जो इस दौरान प्रभावित हुआ है वह है व्यक्तिगत विश्वासी की परिपक्वता प्रक्रिया, जिसके लिए संत पौलुस पूर्णता का कारण बनता है। जो लोग गहरी आस्था और ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें बहुत प्रोत्साहन या समर्थन नहीं मिला है। ये कुछ हद तक एक ऐसे समुदाय की तरह है जिसकी बढ़ती आबादी ने बच्चों के लिए उत्कृष्ट नए प्राथमिक विद्यालय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे प्रत्येक कक्षा में उत्तीर्ण होते गए, प्राथमिक स्तर पर इतने संसाधन खर्च किए गए कि समुदाय ने हाई स्कूल बनाने की उपेक्षा की। इसलिए किसी समय एक ही शैक्षिक सामग्री को बार बार दोहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शायद गहन ज्ञानोदय के लिए जो कुछ भी होता है उसमें घोरा अलग रूप और शैली होती है। 15 वर्षीय बच्चा प्रभावी रूप से 10 वर्षीय बच्चे के साथ एक ही कक्षा में बैठता है और फिर से प्राथमिक विद्यालय स्तर का पाठ्यक्रम सुनता है। प्राथमिक सामग्री गलत या दोषपूर्ण नहीं है, लेकिन न ही यह बच्चे को चुनौती देती है और उसे अगले प्राकृतिक स्तर तक आगे बढ़ाती है जिसकी आवश्यकता होती है। जैसा कि विश्वासियों पर लागू होता है, पूर्णता प्रक्रिया अवरुद्ध है। फिर भी उच्च शिक्षा में स्नातक होना अपने साथ कई तरह की चिंताएं और समस्याएं लेकर आता है। जब हम बच्चे होते हैं तो नियम स्पष्ट और सख्त होते हैं और निर्देश बुनियादी होते हैं। बच्चों को अपने आप मूल्य निर्णय लेने की बहुत कम अनुमति दी जाती है या बर्दाश्त किया जाता है, जो सही भी है, क्योंकि सबसे पहले उन मूल्यों को निर्धारित करने के लिए नींव अच्छी तरह से स्थापित होनी चाहिए। इसलिए चूंकि हम में से अधिकांश लोग पहले ही परमेश्वर की उद्धार योजना के मूल तत्वों को जान चुके हैं कि यीशु कौन है और वह हमसे क्या अपेक्षा करता है तथा भविष्य में क्या होने वाला है, इसलिए हमारे लिए यह स्वाभाविक है कि हम जानने के आराम को छोड़कर प्राथमिक रंगों को छोड़ दें तथा अपना ध्यान अपने विश्वास के अधिक कठिन रंगों और स्वरों की ओर लगाएं।
कठिनाई यह है कि हम जिस काले और सफेद किनारों के इतने आदि थे, वे धुंधले होने लगते हैं। उत्तर हमेशा स्पष्ट और संक्षिप्त नहीं होते। काले और सफेद चरण में विश्वास करना उतना आसान नहीं होता जितना कि हम आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि हमें शुरुआत में छोटे बच्चों के रूप में यीशु के पास आना चाहिए, बुनियादी बातों से शुरू करने और उन्हें सच्चाई के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए बिना किसी सवाल के। लेकिन बाद में हमसे पूरी तरह से उम्मीद की जाती है कि हम ईश्वरीय ज्ञान और समझ में आगे बढ़ने के संघर्ष को अपनाएं, क्योंकि यह संघर्ष ही है जो हमें ईश्वर से जोड़े रखता है और आगे बढ़ाता है। और हमारे वर्तमान विषय पवित्रता पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि पवित्र होने की तुलना में केवल पवित्र दिखना बहुत आसान है।
पवित्रता के साथ समस्या यह है कि यह परमेश्वर के चरित्र का अभिन्न अंग है, लेकिन यह हमारे चरित्र का अभित्र अंग नहीं है। मनुष्य तभी सच्चे अर्थों में पवित्र होता है जब परमेश्वर उसके निकट होता है और हमें अपनी पवित्रता प्रदान करता है। अब ऐसा नहीं है कि पवित्रता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए हमें कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, यह आवश्यक है। लेकिन प्रयास का उद्देश्य परमेश्वर पर भरोसा करना और उसकी योजना का पालन करना है, न कि अपना रास्ता खुद बनाना। कोरह, दातन, अबीराम और उनके अनुयायियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास परमेश्वर की योजना के विपरीत था। हालांकि पवित्रता का एक माप वास्तव में प्राप्त हुआ, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता इतनी शक्तिशाली है कि इसकी मात्र निकटता ही अपने आप ही जो कुछ भी निकट है उसे संक्रमित कर देगी। यह उनकी योजना के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर का न्याय का गुण काम आया। और परमेश्वर के न्याय के अनुसार जो विद्रोही इस अनधिकृत पवित्रता को प्राप्त करते हैं, उनके नियमों और अध्यादेशों के विरुद्ध उन्हें परमेश्वर का क्रोध महसूस होता है और वे नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर याजक, जिन्हें परमेश्वर ने पवित्रता के लिए अलग रखा था और अधिकृत किया था, उन्होंने वैधानिक रूप से और सुरक्षित रूप से उस पवित्रता को प्राप्त किया। हम कुछ समय के लिए पवित्रता के विषय से हट जाएंगे और गिनती अध्याय 19 में हम एक विशिष्ट प्रकार की अशुद्धता और उसके बारे में क्या करना है के बारे में रोचक चर्चा पाएंगे। याद रखें कि अशुद्ध और अपवित्र एक ही बात है, इसलिए जब हम पवित्रता के मुद्दे को छोड़ते हैं तो बस यह ध्यान रखें, आपके अंदर जो पवित्रता है वह ईश्वर है, उसने खुद को वहां रखा है। इसके अलावा उस पवित्रता को दूषित किया जा सकता है। यीशुआ के आगमन ने पवित्रता के संचालन के तरीके को नहीं बदला। यीशुआ के शिष्यों के रूप में यह हमारा काम है कि हम यह सुनिश्चित करें कि उनकी पवित्रता, जो इस अस्थाई और अपूर्ण अभयारण्य में स्थित है जो हमारा शरीर है, सुरक्षित है। और ऐसा करने की शुरुआत बाइबल के अनुसार पवित्रता वास्तव में क्या है इसके बारे में जानने के लिए खुले रहना है। इवेंजेलिकल चर्च की भविष्यवाणियों और अंत समय में नई दिलचस्पी के कारण हम में से ज्यादातर लोगों ने कम से कम लाल बछिया और यहूदियों के एक समूह की एक परिपूर्ण बछिया की निरंतर खोज के बारे में तो सुना ही होगा। इस विशेष लाल रंग की गाय की जरूरत तब पड़ती है जब यरूशलेम में लंबे समय से प्रतीक्षित मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाता है। खैर, यहां गिनती 19 में लाल बछिया अनुष्ठान का उद्देश्य और विवरण बताया गया है। हालांकि हमें इसके उद्देश्य तक पहुंचने से पहले अनुष्ठान प्रक्रिया के कई पदों से गुजरना होगा, लेकिन यह पता चलता है कि यह सब एक ऐसे व्यक्ति को शुद्ध करने के बारे में है जो मानव शव को छूने के कारण अशुद्ध हो गया है। गिनती अध्याय 19 पूरा पर है।
इस अध्याय और पिछले अध्यायों में हमने इन विस्तृत अनुष्ठानों के बारे में जो कुछ पढ़ा है वह आधुनिक लोगों को बकवास लगता है। जादू, टोना, ऐसी चीजें जो हम उम्मीद करते हैं कि ब्राजील के वर्षावन के कुछ गहरे जंगल के गोत्र करते होंगे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अनुष्ठान को महत्वहीन और अनावश्यक और मूर्खतापूर्ण मान लिया है। हम अब इसका मूल्य नहीं देखते हैं। हम वास्तव में इसे पसंद नहीं करते हैं और इसके बारे में बात करने में बिल्कुल भी सहज नहीं है। लेकिन बाइबल के अनुष्ठान में एक अदृश्य क्षेत्र में क्या चल रहा है, इसकी दृश्य तस्वीर निहित है।
मेरा विश्वास करें, चर्च के अस्तित्व में आने से बहुत पहले रब्बियों को यह समझाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता था कि अनुष्ठान क्यों किए जाते थे और इन पवित्र प्रक्रियाओं के दौरान वास्तव में क्या होता था। जैसा कि हम करते हैं, क्या बलि दिए गए जानवरों के खून और शरीर के अंगों में अलौकिक गुण होते थे? क्या सही तरीके और क्रम में की गई पवित्र प्रक्रियाओं ने इसराइल के लोगों पर जादू जैसा प्रभाव डाला? क्या पानी में नहाना और सही समय पर सही शब्द बोलना वास्तव में हमारे शरीर और हमारी आत्माओं के साथ प्रतिक्रिया करता है ताकि वह सब कुछ दूर हो जाए जिसने हमें दूषित किया है और परमेश्वर को नाराज किया है? इसलिए गिनती का यह अध्याय और उसका विवरण जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही जरूरत है कि हम अनुष्ठान अशुद्धता से जुड़े बाइबल के सिद्धांतों को समझने में एक और कदम उठाए। मैं अपनी बात की शुरुआत तलमूड से एक प्रसिद्ध रब्बी के बारे में एक संक्षिप्त कहानी उद्धृत करके करना चाहूंगा, जिनसे उसी मुद्दे को समझाने के लिए कहा गया था जिसे मैंने अभी प्रस्तुत किया है। एक मूर्ति पूजक ने रब्बान जोहानन बेन जक्कई से सवाल करते हुए कहा, यहूदियों, तुम जो कुछ करते हो वह एक प्रकार का जादू टोना प्रतीत होता है। एक गाय को लाया जाता है, उसे जलाया जाता है, उसे पीसकर राख बना दिया जाता है और उसकी राख को इकट्ठा किया जाता है। फिर जब तुम में से कोई व्यक्ति किसी शव के संपर्क में आने से अशुद्ध हो जाता है तो उस पर राख की 2 या 3 बूंदें पानी में मिलाकर छिड़की जाती हैं और उससे कहा जाता है तुम शुद्ध हो गए हो। रब्बन योहानान ने मूर्ति पूजक से पूछा, क्या कभी पागलपन की आत्मा ने तुम्हें अपने वश में किया है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। रब्बी ने पूछा, क्या तुमने कभी ऐसा आदमी देखा है जिसमें पागलपन की आत्मा हो? हेथेन ने उत्तर दिया, हां। रब्बी ने पूछा, और आप ऐसे आदमी के लिए क्या करते हैं? मूर्ति पूजक ने उत्तर दिया, जरें लाई जाती हैं, उनके जलने का धुआं उसके चारों ओर उठने दिया जाता है और उस पर तब तक पानी छिड़का जाता है जब तक कि पागलपन की आत्मा भाग ना जाए। रब्बन योहानान ने तब कहा, क्या तुम्हारे कान नहीं सुनते कि तुम्हारा मुंह क्या कह रहा है? ऐसा ही उस मनुष्य के साथ भी है जो शव के संपर्क से अशुद्ध हो जाता है, वह भी भूत प्रेत से ग्रस्त हो जाता है।
आत्मा अशुद्धता की आत्मा, और पवित्र शास्त्र कहता है, मैं झूठे भविष्यद्वक्ताओं को और अशुद्ध आत्मा को देश से मिटा दूंगा। अब जब अन्य जाति चले गए तो रब्बन योहानान के शिष्यों ने कहा, हे हमारे स्वामी, आपने उस अन्य जाति को तो मात्र एक उत्तर देकर टाल दिया, परंतु हमें क्या उत्तर देंगे?
रब्बन योहानान ने उत्तर दिया, तुम्हारे जीवन की शपथ, मैं शपथ लेता हूं, शव में अपने आप में अपवित्र करने की शक्ति नहीं होती, न ही राख और पानी के मिश्रण में अपने आप में शुद्ध करने की शक्ति होती है। सच्चाई यह है कि लाल गाय की शुद्ध करने की शक्ति पवित्र व्यक्ति की ओर से एक आदेश है। पवित्र व्यक्ति ने कहा, मैंने इसे एक कानून के रूप में निर्धारित किया है, मैंने इसे एक आदेश जारी किया है, तुम्हें मेरे आदेश का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है, यह अनुष्ठान कानून है। संक्षेप में रब्बी कह रहे हैं, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि यह सब कैसे काम करता है, लेकिन मुझे पता है कि गाय में अपने आप में कोई जादुई शक्ति नहीं है, और मुझे पता है कि एक शव स्वाभाविक रूप से किसी को भी अपवित्र नहीं कर सकता है। अंत में हम यह लाल गाय शुद्धिकरण प्रक्रिया करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए कहा है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो वह हमें शुद्ध मानेंगे और इसके अलावा कुछ और करने की अनुमति नहीं है।
तो अच्छा, रब्बी इस बात से इनकार कर रहा है कि इसमें किसी भी तरह का जादू टोना शामिल है। वह आसानी से स्वीकार करता है कि यह सब निश्चित रूप से एक बकवास मूर्ति पूजक भूत प्रेत की तरह दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है, और इसका एक कारण यह भी है कि वह कहता है कि परमेश्वर ने कहा है कि उसने इज़राइल की भूमि से अशुद्ध आत्माओं को भगा दिया है, इसलिए यह असंभव है कि दूषित व्यक्ति में भी अशुद्ध आत्मा हो।
लेकिन जो बात रब्बी को हैरान करती है, हालांकि यह इस तलमूड कहानी में आसानी से नहीं देखा जा सकता, वह यह है कि गिनती 19 में लाल बछिया की राख के उस अपवित्र व्यक्ति पर प्रभाव के बारे में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है जिसने लाश को छुआ था। आइए हम उस पर करीब से नजर डालें जिसे हम लाल बछिया की बलि कहते हैं और देखें कि यह विरोधाभास कहां निहित है।
पहली बात जो हम पद 2 में देखते हैं वह यह है कि इसमें शामिल जानवर एक लाल गाय है जिसे हम आम तौर पर लाल बछिया कहते हैं। यह निश्चित रूप से एक मादा जानवर है। यह युवा है लेकिन 1 साल से बरी है और इसे कभी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी इसे कभी भी किसी सामान्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, कभी भी जोता नहीं गया का यही अर्थ है। ये जानवर भी बेदाग होना चाहिए क्योंकि अनुष्ठान वध के लिए नियत सभी जानवर बेदाग होते हैं। अगली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बताया गया है कि लाल गाय को वध के लिए शिविर के बाहर ले जाना चाहिए। यह विरोधाभास के पहले तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह लाल बछिया जिसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण शुद्धिकरण मिश्रण में प्राथमिक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाना है, एक अशुद्ध स्थान पर मारा जा रहा है। याद करें कि शिविर के बाहर का क्या मतलब है। एकमात्र अनुष्ठानिक रूप से साफ जमीन शिविर के अंदर है। शिविर के अंदर वह जगह है जहां इजरायली रहते हैं। समय के साथ यह क्षेत्र अधिक परिभाषित हो गया और वास्तविक माप, यदि आप चाहें तो शहर की सीमाएं निर्धारित की गईं। अनुष्ठानिक रूप से साफ और अनुष्ठानिक रूप से पवित्र को भ्रमित न करें। एकमात्र अनुष्ठानिक रूप से पवित्र जमीन मंदिर या तंबू के आंगन के भीतर थी, जो अनुष्ठानिक रूप से साफ शिविर के केंद्र में स्थित थी। इसलिए शिविर के बाहर कहीं एक अशुद्ध जगह पर एक विशेष वेदी बनाई गई। वास्तव में वेदी शायद एक बहुत ही मजबूत शब्द है। यह केवल एक बरा लेकिन आम लकड़ी की आग का टीला था जिस पर लाल गाय को मार दिया जाता था और जला दिया जाता था। सामान्य प्रक्रिया यह थी कि उच्च कोटि का पुजारी, लेकिन उच्च पुजारी नहीं, जो हमारे उदाहरण में गिनती में हारून का पुत्र एलियाजर था, लाल गाय को लकड़ी के ढेर के पास ले जाता था और समारोह संपन्न करता था। यह पुजारी गाय का गला काटता था और फिर उसके कुछ रक्त को एक औपचारिक बर्तन में इकट्ठा करता था। फिर वह मुड़कर पवित्र स्थान के दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा होता था और अपनी उंगली से थोड़ा रक्त पवित्र स्थान की दिशा में 7 बार छिड़कता था। बेशक वह काफी दूरी पर था, इसलिए दृष्टि की एक रेखा स्थापित करनी थी ताकि वह पवित्र स्थान के अंदर के पहले कक्ष का दरवाजा सचमुच देख सके।
इसके बाद पूरी गाय, उसका हर हिस्सा को इस विशाल अलाव के ऊपर जला दिया जाता था। जब गाय को जलाया जा रहा था तो पुजारी देवदार की लकड़ी हिसॉप, जिसे अक्सर अजवायन कहा जाता है, और लाल रंग का धागा उसके ऊपर फेंकता था जिसे वह भी जला देता था। संक्षेप में लकड़ी, हिसॉप और धागे को मिश्रण में मिलाया जा रहा था। अपना कार्य पूरा करने के बाद पुजारी को अपना पुरोहितीय वस्त्र उतारना पड़ता था और जल से स्नान करना पड़ता था। नए कपड़े पहनने के बाद वह फिर से शिविर में प्रवेश कर सकता था, लेकिन वह सूर्यास्त तक अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध अवस्था में रहता था, जो वर्तमान दिन के अंत और अगले दिन की शुरुआत का संकेत था। जो कोई भी इस ऑपरेशन में उसकी सहायता करता था उसे भी अपने कपड़े उतारने और धोने पड़ते थे, नहाना पड़ता था, और वे भी सूर्यास्त तक अशुद्ध अवस्था में रहते थे। इसके बाद एक व्यक्ति जिसने इस समय तक किसी भी अनुष्ठान में भाग नहीं लिया था और इसलिए अभी भी अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध था, को राख को इकट्ठा करना था और उन्हें एक निर्दिष्ट स्थान पर रखना था जहां उन्हें पानी के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह से जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए विशेष शुद्धिकरण तरल बनाया जाएगा। राख इकट्ठा करने से यह व्यक्ति अशुद्ध हो गया, इसीलिए इसमें शामिल सभी लोगों की तरह उसे भी अपने कपड़े धोने थे और नहाना था और सूरज ढलने तक अशुद्ध अवस्था में रहना था।
क्योंकि मृत्यु आमतौर पर मानव मृत्यु,
कि संपर्क में आने से होने वाली अशुद्धता इतनी अधिक होती है कि यह न केवल उस व्यक्ति या वस्तु को अशुद्ध कर सकती है जो इसे छूता है, बल्कि यह उस व्यक्ति या वस्तु को भी अशुद्ध कर सकती है जो इसके करीब आता है। हालांकि जो वास्तव में मृत शरीर के संपर्क में आता है वह आसपास मौजूद किसी भी चीज की तुलना में अधिक अशुद्धता से दूषित होता है।
मृत शरीर से होने वाली अशुद्धता का उपचार लाल बछिया की राख और पानी का मिश्रण था। इस मिश्रण को उस घर या इमारत पर छिड़का जाता था जहां उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, और जो भी उस व्यक्ति के संपर्क में आया था उस पर भी छिड़का जाता था। छिड़कने की प्रक्रिया दो बार हुई, पहली बार अशुद्धि के तीसरे दिन और दूसरी बार अशुद्धि के सातवें दिन।
जिन अशुद्ध व्यक्तियों पर उचित तरीके से छिड़काव किया गया था उन्हें सातवें दिन के अंत में अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध स्थिति में लौटा दिया गया। उस समय उन्होंने अपने कपड़े धोए और स्नान किया।
यह कोई मामूली बात नहीं थी। जो कोई भी शव से अशुद्ध हो जाता था और इस अनुष्ठान प्रक्रिया से नहीं गुजरता था उसे काट दिया जाना था। हमने इस शब्द कट ऑफ इब्रानी में केरेट के बारे में बात की है और आप अधिक जानकारी के लिए पिछले पाठों की समीक्षा कर सकते हैं। संक्षेप में, आम तौर पर एक व्यक्ति जो कट ऑफ था उसने इज़राइल के लोगों और उससे भी महत्वपूर्ण रूप से इज़राइल के परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता खो दिया। एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, इतनी कठोर सजा क्यों? इस कठोर परिणाम का उत्तर पद 20 के अंत में है, वह व्यक्ति जो एक मृत शरीर से अशुद्ध हो गया है और परमेश्वर के प्रावधान को शुद्ध करने से इनकार करता है, प्रभु के पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया है।
परमेश्वर की पवित्रता खतरे में पड़ गई है और याहवे के निवास स्थान में अपवित्रता लाने से ज्यादा अत्याचारी कुछ नहीं है। इसे अपने दिमाग में सबसे आगे रखें क्योंकि हम इसे फिर से देखेंगे।
अध्याय के अंत में हमें आगे बताया गया है कि जिस स्वच्छ व्यक्ति ने राख और पानी के मिश्रण को अशुद्ध व्यक्ति पर छिड़का था अब वह स्वयं को अशुद्ध अवस्था में पाता है और फिर उसे अपने कपड़े धोने होंगे, स्नान करना होगा और सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करनी होगी।
इससे भी बढ़कर जो कोई भी वर्तमान में धार्मिक रूप से शुद्ध है और इस विशेष शुद्धिकरण जल की एक बूंद भी छू लेता है वह अशुद्ध हो जाता है, और जो कोई भी या जो भी अब उस अशुद्ध व्यक्ति को छूता है वह अशुद्ध हो जाता है। और यहीं से लाल बछिया की कहानी पूरी होती है।
मैं इस चौंकाने वाले और कुछ हद तक उलझन भरे अध्याय की जांच इसके अंत से शुरू करता हूं। ध्यान दें कि जैसा कि पिछले अध्याय में पवित्रता के बारे में बताया गया था, पवित्रता अनजाने में एक पवित्र वस्तु से दूसरी पवित्र वस्तु में स्थानांतरित हो सकती है, वैसा ही अशुद्धता के बारे में भी है। अशुद्धता अनजाने में एक अशुद्ध वस्तु से दूसरी अशुद्ध वस्तु में स्थानांतरित हो सकती है, चाहे वह वस्तु हो या लोग।
मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैंने आज शुरू में क्या कहा था। आप इससे असहज हो सकते हैं, आपको यह बहुत पसंद भी नहीं आ सकता है, लेकिन यहां यह काले और सफेद रंग में है। यह मेरी व्याख्या नहीं है, यह इब्रानी परंपरा से नहीं लिया गया है, यह मानवीय टिप्पणी नहीं है। हम इसे सीधे ईश्वर के वचन बाइबल से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम इसे वैसे ही लें जैसा कि यह है। आयर इसे केवल चाहने या इसे रूपक बनाने की कोशिश न करें, जैसा कि सदियों से ईसाइयों की आदत रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दकोश कहता है कि विरोधाभास एक ऐसी स्थिति या कथन है जो विरोधाभासी, अविश्वसनीय या बेतुका लगता है, और फिर भी यह बहुत संभव है कि यह सच या तथ्यात्मक हो। और इस लाल बछिया की बलि का विरोधाभास यह है, हर कोई जो इसकी तैयारी, मृत्यु जलाने और इसकी राख को इकट्ठा करने से जुड़ा है वह अशुद्ध हो जाता है। क्या आपने इसे समझा? जो लोग शुद्धिकरण के इस अनुष्ठान कानून में परमेश्वर के आदेश का पालन कर रहे हैं वे शुद्ध अवस्था में शुरू करते हैं लेकिन अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध हो जाते हैं। सतह पर यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहोवा ने कुछ पवित्र और या स्वच्छ लोगों को जानबूझकर अनुष्ठानिक रूप से अपवित्र होने का आदेश दिया है? अशुद्ध व्यक्ति शव को छूने से लाल बछिया की राख से शुद्ध हो जाता है, लेकिन जो शुद्ध व्यक्ति अनुष्ठान करते हैं और राख को लगाते हैं वे अशुद्ध हो जाते हैं। जैसा कि रब्बी इस प्रक्रिया के बारे में कहते हैं, वही राख जो शुद्ध को अशुद्ध करती है। यह कैसे संभव है? यह अन्य सभी बलिदानों और उनके प्रभावों से बिल्कुल विपरीत है। अन्य बलिदान प्रायश्चित करते हैं और अक्सर शुद्ध करते हैं। आम तौर पर बलिदान को ठीक से संभालना अपने आप ही अपने साथ पवित्रता का एक माप लाता है। वास्तव में औसत नागरिक को अपने बलिदान को पुजारी को सौंपना चाहिए ताकि उसे पीतल की वेदी पर रखा जा सके, क्योंकि केवल एक पुजारी ही वेदी के पास जाने के लिए पर्याप्त पवित्र है। यहां तक कि जानवर को भी पवित्र माना जाता है। केवल शुद्ध होने से अधिक उच्च दर्जा। जिस क्षण उपासक इसे बलि के रूप में चढ़ाने का फैसला करता है, अन्यथा इसे पवित्र परिसर में भी जाने की अनुमति नहीं होगी। तो यहां क्या है? लाल बछिया की बलि, नियमित बलि और मंदिर को समझने में आने वाली कठिनाइयों में से एक अनुष्ठान शब्द पवित्र का वास्तविक अर्थ है। इब्रानी में यह शब्द काडेश है या काडोश है, और इसका वास्तव में मतलब है अलग होना या अलग रखा जाना। जब मेरी पत्नी कपड़े धोने के लिए तैयार होती है तो वह कपड़े के प्रकारों के साथ साथ हल्के और गहरे रंग के कपड़ों को भी सावधानी पूर्वक अलग करती है। काडोश या कोडेश के अर्थ में यह पूरी तरह से सही है कि वह इब्रानी शब्द को एक रंग या कपड़े को दूसरे से अलग करने के लिए लागू करे, लेकिन क्या उसने गहरे रंग के कपड़े को पवित्र और हल्के रंग के कपड़े को कुछ और बनाया? नहीं।
काडोश या कोडेश शब्द के इस्तेमाल का संदर्भ ही मायने रखता है। क्या इसका इस्तेमाल आध्यात्मिक धार्मिक संदर्भ में किया जाता है या कुछ और? एक व्यक्ति विनाश के लिए कडोश हो सकता है या वे शैतान के लिए केदेश हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही बातें नकारात्मक हैं। याद रखें, पवित्र एक इब्रानी शब्द नहीं है, यह एक अंग्रेजी शब्द है जिसका इस्तेमाल कोडेश या कडोश के अनुवाद के रूप में किया गया है। यह केवल तभी होता है जब कोई चीज ईश्वर के लिए पवित्र होती है, विशेष रूप से ईश्वर की सेवा के लिए अलग की गई, कि यह अपने साथ पवित्र की भावना लेकर आती है, जैसा कि हम पवित्र के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार लाल बछिया इतनी पवित्र नहीं है जितनी कि यह केवल पवित्र है, अलग रखी गई है, लेकिन इसे ईश्वर की सेवा के लिए अलग नहीं रखा गया है, जैसे कि एक मानक मंदिर बलिदान में, बल्कि विनाश के लिए। लेकिन इस विनाश का उपयोग ईश्वर अपने लोगों को फिर से शुद्ध करने के लिए करेगा। इसलिए पवित्र शब्द को लागू करना एक गलती होगी, जैसा कि ईसाई धर्म में लाल बछिया के लिए सोचा जाता है।
लाल बछिया अनुष्ठान को समझने की एक और कुंजी यह है कि तोरा इस बलिदान को इब्रानी में हतात कहता है। यदि आप कुछ समय से मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं तो यह पहली बार नहीं है जब आपने हतात शब्द सुना हो। यानी लाल बछिया अनुष्ठान हतात श्रेणी के बलिदान के सामान्य वर्गीकरण में आता है। याद करें कि हमारे लैव्य व्यवस्था अध्ययन की शुरुआत में हमने बलिदानों के विभिन्न वर्गीकरणों और उनके सटीक ईश्वर निर्धारित उद्देश्यों के साथ बहुत समय बिताया। वे गहरे और जटिल हैं, इसलिए मैं हतात बलिदान के केवल उन हिस्सों के बारे में बात करूंगा जो लाल बछिया अनुष्ठान से संबंधित हैं।
अधिकांश बाइबल अनुवादक इब्रानी शब्द हतात का अनुवाद पाप की बलि के रूप में करेंगे, लेकिन यह काफी अस्पष्ट है और इसका उद्देश्य पूरी तरह से भूल जाता है। हतात का बेहतर अनुवाद शुद्धिकरण की बलि के रूप में किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जबकि यह एक पाप हो सकता है जो अंततः इस हतात की आवश्यकता को जन्म देता है, हतात का प्रभाव शुद्ध करना, पवित्र करना है।
मानक हतात बलिदान में पशु का मांस नहीं खाया जा सकता है और पशु को शिविर के बाहर जलाया जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हमारे लाल बछिया अनुष्ठान में होता है। लेकिन लाल बछिया प्रकार के हतात और मानक हतात के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। उदाहरण के लिए, लाल बछिया का खून वेदी पर नहीं छिड़का जाना चाहिए, बल्कि खून को गाय के अंदर ही रहना चाहिए ताकि वह राख के हिस्से के रूप में जल जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि बलि प्रणाली का एक आधारभूत सिद्धांत यह है कि रक्त पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। हठात नियमित लेवी शुद्धिकरण बलिदान एक सबसे अनोखा बलिदान है, क्योंकि इसका एक प्रभाव इसके संचालकों और अधिकारियों को अशुद्ध बनाना है। और निश्चित रूप से हम पाते हैं कि यह सटीक बात यहां गिनती 19 में लाल बचिया अनुष्ठान पर भी लागू होती है। कितनी अजीब बात है। संभवतः क्या कारण हो सकता है कि परमेश्वर ने एक ऐसा बलिदान बनाया जो अशुद्धता उत्पन्न करता है। खैर, इसका कारण यह है, बलि का जानवर, हमारे मामले में लाल बचिया, अशुद्ध व्यक्ति या वस्तु की अशुद्धियों को प्रभावी ढंग से अवशोषित करके शुद्ध करता है। हठात बलि का जानवर आध्यात्मिक स्पंज की तरह व्यवहार करता है, और चूंकि हठात बलि पशु अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ प्रकार के संदूषण को सोखता है, इसलिए यह बहुत अधिक मात्रा में अशुद्धता से दूषित हो जाता है और इसलिए इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। यह इतना खतरनाक रूप से अशुद्ध है कि इसे किसी भी पवित्र चीज से दूर नष्ट किया जाना चाहिए। इसे किसी भी स्वच्छ चीज, इज़राइल के शिविर से भी दूर नष्ट किया जाना चाहिए। इसे ऐसी स्थिति में पवित्र वेदी पर संभवतः नहीं चढ़ाया जा सकता है, और इसलिए इसे शिविर के बाहर किसी भी पवित्र चीज से दूर एक आम आग पर नष्ट कर दिया जाता है। वास्तव में तकनीकी रूप से हठात बलि परमेश्वर को नहीं चढ़ाई जाती है, इसे एक उद्देश्य के लिए अलग रखा जाता है। यह एक उद्देश्य के लिए कादोश है, लेकिन उस उद्देश्य के लिए इसे परमेश्वर के लिए अलग नहीं रखा जाना चाहिए। केवल परमेश्वर के लिए विशेष रूप से अलग रखी गई चीजें कादोश ही परमेश्वर को चढ़ाई जा सकती हैं। आम उद्देश्यों के लिए अलग रखने की अवधारणा बनाम परमेश्वर के लिए अलग रखने की अवधारणा भी उस आग के उपयोग के साथ खेल में आती है जिसका उपयोग जानवर को जलाने के लिए किया जाता है। पीतल की वेदी की आग एक सकारात्मक प्रकार की आग है जो बदलती है और शुद्ध करती है, क्योंकि इसका उपयोग परमेश्वर को धुआं चढ़ाने के लिए किया जाता है। लाल बनिया को जलाने वाली आम लकड़ी की आग केवल नष्ट करने के लिए होती है। इसका उद्देश्य उस पर जो कुछ भी डाला जाता है उसे खत्म करना होता है, क्योंकि यह खतरनाक और अपवित्र होता है, मेडिकल कचरे को जलाने जैसा ही। हमने हाल ही में चर्चा की कि ईश्वर की पवित्रता इतनी शक्तिशाली है बिना सील किए गए परमाणु विकिरण की तरह, कि जो कुछ भी उसके पास आता है वह पवित्रता से विकिरणित हो जाता है और इसीलिए खुद भी पवित्रता का एक माप प्राप्त कर लेता है। लाल गाय के साथ भी ऐसा ही प्रभाव होता है, जो दूसरों की अशुद्धता को सोखने से सबसे खराब तरह की अशुद्धता से इतनी भर जाती है कि उसके पास आने वाली हर चीज, हर वस्तु और हर इंसान अशुद्धता से विकिरणित हो जाता है। अब मैं लाल बछिया की बलि के बारे में एक और अनोखी बात बताना चाहता हूं। इसका लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिलता जो बलि चढ़ाता है। वास्तव में यह किसी भी हठात बलि के लिए भी ऐसा ही है। जानवर के खून का इस्तेमाल उपासक को शुद्ध करने या उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए नहीं किया जाता है। यानी नियमित हठात बलिदान में जानवर का खून वेदी पर और कुछ मामलों में अन्य पवित्र स्थान के सामान पर छिड़का जाता है, क्योंकि जानवर का खून शुद्धिकरण का कार्य करता है। लाल बछिया बलिदान में जानवर का खून राख का हिस्सा बन जाता है और पानी के साथ मिलकर उस व्यक्ति पर छिड़का जाता है जिसे शुद्धिकरण और दोष निवारण की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, मानक हठात बलिदान का मूल उद्देश्य पशु के रक्त का उपयोग पवित्र स्थान, तबरनकल या मंदिर और इसकी पवित्र वस्तुओं को शुद्ध करने के उद्देश्य से करना है। इसका उपयोग उस व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जाता है जो भेंट लाता है, न ही इसे यहोवा को अर्पित किया जाता है। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ बातें एक साथ रखता हूं। याद करें कि पद 20 में क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लाल बछिया की राख को पानी में मिलाकर मृत्यु की अशुद्धता, मृत शरीर को छूने के कारण से खुद को शुद्ध नहीं करता है तो उसे काट दिया जाएगा, इज़राइल की मंडली के साथ उसका संबंध समाप्त हो जाएगा और उसका परमेश्वर के साथ संबंध समाप्त हो जाएगा। ये कठोर दंड क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा शव से अशुद्धता प्राप्त करने का परिणाम ये होता है कि वह परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र कर देता है। परमेश्वर के पवित्र स्थान की अशुद्धता ही सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसलिए परमेश्वर के पवित्र स्थान की अशुद्धता ही है जिसका समाधान किया जाना चाहिए। इस सब का निष्कर्ष लाल बछिया की राख जब जीवित जल के साथ मिलाई जाती है, परमेश्वर के पवित्र स्थान को शुद्ध करने के लिए बनाई गई है। और यहूदी धर्म में यह लंबे समय से समझा जाता रहा है कि परमेश्वर के लोग किसी रहस्यमय तरीके से परमेश्वर के पवित्र स्थान भी हैं। यह अवधारणा कोई नया ईसाई आविष्कार नहीं है, यही उनका एकमात्र उपयोग है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी कहानी में अच्छे रब्बी को यह समझाने में इतनी कठिनाई हुई कि राख, जो स्पष्ट रूप से परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध करने के लिए थी, किसी भ्रामक कारण से एक इंसान को सबसे खराब तरह के संदूषण, मृत्यु के संपर्क से शुद्ध करने के लिए एक अनुष्ठान में भी इस्तेमाल की गई थी। रब्बी को वह समझ में नहीं आया जो अब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि आखिरकार एक बार जब मसीहा ने हमारे लिए प्रायश्चित करने के लिए अपना जीवन त्याग दिया, तो परमेश्वर उस पवित्र स्थान को छोड़ देंगे जो मनुष्यों ने उनके लिए बनाया था, और मनुष्य को ही पूरी तरह से शाब्दिक रूप से अपना नया पवित्र स्थान बना लेंगे। यहां जो अनुष्ठान चित्र उभरता है वह ईश्वर के पवित्र स्थान को मनुष्य से जोड़ना है। क्या हमें यह नहीं बताया गया है कि हम विश्वासियों के रूप में अब ईश्वर के मंदिर हैं? और क्या वास्तव में पवित्र आत्मा जो ईश्वर है इन नाजुक तंबुओं के भीतर नहीं रहता है जिन्हें हम शरीर कहते हैं? फिर इन तंबुओं को शुद्ध और स्वच्छ किया जाना चाहिए ताकि ईश्वर वहां निवास कर सके। इसके अलावा प्राचीन तंबू और मंदिर की तरह लोगों के निकट और लोगों के संपर्क में रहने और एक अपवित्र दुनिया में रहने का मतलब है कि पवित्र स्थान लगातार अशुद्धता की बमबारी के अधीन रहेगा। इसलिए उन अशुद्धियों का नियमित रूप से शुद्धिकरण अनिवार्य है। यीशु के क्रूस पर चढ़ने को याद करें, जब रोमन सैनिक यह पता लगाना चाहता था कि यीशु वास्तव में मर गया है या बेहोश हो गया है, तो उसने भाला लेकर उसके बाजू में छेद कर दिया, और क्या निकला? खून और पानी। हम खून की उम्मीद करते हैं, लेकिन पानी क्यों? क्योंकि खून प्रायश्चित करता है और पानी शुद्ध करता है, और दोनों ही क्रियाएं जरूरी हैं। खून पाप को दूर करता है, पानी अशुद्धता को दूर करता है।
दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग आध्यात्मिक तत्व, लेकिन यीशु दोनों के लिए पर्याप्त था। गिनती अध्याय 19 का शुद्धिकरण मिश्रण क्या था? रक्त और पानी। रक्त बछिया की राख में था, शुद्धिकरण के पानी के साथ मिलाया गया था और मृत्यु से दूषित व्यक्ति पर लगाया गया था।
हम अगली बार किसी अन्य क्षेत्र में चले जाएंगे।